نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قرآنی صورتوں کا نظم جلی آج ہم اس میں سے کریں گے صورت بولیے سب سورۃ توبہ کس کو سچی بتائے سورۃ توبہ کا انتظار تھا میں تو کب سے بے چین ہوں کہ کب ہم سورۃ توبہ پہ آئیں کل سورۃ انفال کو بھی بہت انجوائے کیا اور آج اس کو بھی پڑھانے کے لیے بے چین ہوں رات سے دن میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ خیر اور عافیت سے ہم اس سورۃ کو کر سکیں سچی بات ہے کہ سورۃ توبہ پڑھ کر توبہ کرنے کو دل کرتا ہے اور سورۃ توبہ پڑھ کر زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے اور سورۃ توبہ ہے وہ سورت جو ہماری زندگیوں کے اندر جو جمود آ جاتا ہے نا اور ہم کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو پھر معاشرے کے قد کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں یہ سورۃ توبہ شرمندہ کر دیتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کے رستوں میں بلایا جاتا ہے تو تمہارے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں کیا تم زمین کے ساتھ جم جاتے ہو اردی تم بالحیات دنیا کیا تم دنیا کی زندگی سے خوش ہونے لگ جاتے ہو یعنی ایسے لگتا ہے کہ انسان کو تھپڑ پڑ رہے ہیں اور اگر عمل اچھا ہو تو خوشی بھی بہت ہوتی ہے تو سورۃ توبہ حقیقت میں بہت ہی پیاری سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے کون سی سورت ہے سب بولیں نویں نمبر کی سورت ہے اس سے پیچھے کی سورت انفال اور سورۃ توبہ دونوں کا مضمون ملتا ہے یہ بھی چیز آپ لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کا ایک ڈفرینٹ اینگل دیکھیں گے کہ اس سورت کی اتنی اہمیت کیا ہے اور دکھ کے ساتھ کہوں کہ اس سورت کے آج اتنے دشمن کیوں ہیں آج یہ مطالبات موجود ہیں کہ سورۃ توبہ اور انفال کو قرآن سے نکال دو پھر ہم قرآن پڑھیں گے اور آج اس کو کئی جگہوں کے سلیبس میں سے نکلوا دیا گیا ایک وقت تھا کہ کچھ ایسے کورسز تھے کہ اس کے اندر سورۃ توبہ شامل تھی اور میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ سورۃ توبہ ہی تھی جو اس وقت پڑھی تھی لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ سورۃ توبہ نہیں تھی اصل بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں ابھی جوہر آباد میں جب تھے تو دور قرآن اور اس کے بعد کے سیشنز میں کئی ٹیچرس جو کہ ایک مختلف کالجز میں ایز اے اسلامیات ٹیچ ہی کر رہی ہیں ان کے ساتھ میری پرسنل باتیں ہوئیں اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ ہم گواہی دے سکتے ہیں اس بات کی کہ ہم سارا سال بچیوں کو یا لڑکیوں کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں نا اسلامیات سکھاتے ہیں لیکن دورہ قرآن میں بیٹھ کر ہمیں اپنی کم علمی اور کم مائگی کا احساس ہوا ہے اور علمی باتیں تو دورہ قرآن میں ہوتی کوئی نہیں ہے دل کو چھو جاتا ہے قرآن وہ کہتی ہے ہم نے اپنی بچیوں کو جب کلاس میں پڑھانا شروع کیا ہوتا ہے ہماری نظر ایک چیز پہ ہوتی ہے کہ سلیبس پورا کرنا ہے پیچھے سے آیا ہوا ہے جی یہ پڑھنا ہے یہ پڑھانا ہے اور کئی چیزیں تو ہم بس ایسے ہی ختم کرنے کے لیے کہ اب اس کو نہ کیا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہم پڑھا دیتے ہیں تو آج یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس سورت کا وہ حق ادا نہیں کر سکے پھر آپ دیکھیے کہ اس سورت کو اگر آپ تھوڑا سا اس کے مقام کے ناطے کے ساتھ دیکھ لیجئے گا تو قرآن پاک میں یہ سورت انفال کے بعد ہے نویں نمبر کی سورت ہے 129 آیات ہیں مدنی سورت ہے اور اس کا فلو چارٹ اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں پانچ بڑے ٹاپک ہیں یعنی آپ ہر ٹاپک کو کہہ لیجئے کہ اپنی جگہ ایک انرجی ڈرنک ہے پانچ پیراگراف ہیں کیسے ہیں ذرا سا اس کا بریک ڈاؤن دیکھیے پہلی 28 آیتیں 1-28 بنی اسماعیل یعنی مشرقین عرب کے خلاف جہاد کا حکم تھا یہ جس کو آپ اور میں مشرقین مکہ کہتے ہیں وہ اصل میں بنی اسماعیل تھے پہلی 28 آیات میں ان کے ساتھ جہاد تھا یہ تھوڑا سا اس کا خلاصہ دیتی ہوں اس میں ہم بات کریں گے پھر اگلی آیتیں 29-35 بنی اسرائیل اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کا حکم ہے پھر آیت 36-41 میں ترغیب جہاد ہے قیصر روم اور اس کے باج گزار کیا ہوتے ہیں جو اس سے ملے ہوئے ہیں ساتھ رہنے والے ان کے خلاف جہاد کا حکم اور ترک جہاد پر استبدال کی دھمکی استبدال کیا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ نہیں تو تمہیں نکال کر تمہاری جگہ دوسرے لے آؤں گا ڈھانٹ ہے اس میں اور پھر آیت 42-127 فورتھ پیراگراف طویل حصہ منافقین کے خلاف جہاد کا حکم اور آیت 128-129 جو بالکل آخری دو آیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خیر خواہ ہیں ان کی قدر کر لو یعنی اللہ کے نبی کی خیر خواہی کی قدر کرنے کا حکم ہے کیا پتہ چلا آپ کو پانچ حصوں میں پہلا جہاد بنی اسماعیل کے خلاف دوسرا بنی اسرائیل کے خلاف تیسرے میں ترغیب جہاد چوتھے میں منافقوں سے جہاد اور پانچویں میں نبی کی خیر خواہی، یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھ نہیں آتی، ساری سورت تو جنگوں جدال سے بھری ہوئی ہے۔ ملاحمات کہتے ہیں نبی کی جنگوں کو، جو مرکزی مضمون پھر کیا بنا کہ مشرکین عرب جو نفس سلم کو پچھلے 13 سال سے ستا رہے ہیں، اب ان کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ اسی طرح اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے خلاف بھی جہاد ضروری تھا، کیونکہ وہ اس دور میں سازشوں کے جال بن کے اللہ کے نبی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے۔ پھر منافقین کے خلاف بھی جہاد ضروری ہے، اور خام مسلمان، خام کون ہوتے ہیں؟ رف جو ہوتا ہے، جیسے کروڈ ہوتا ہے نا، کروڈ آئل۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی آئل جس سے نکلتا ہے، مثلا سرسوں یا بنولا، تو اس کے اندر سے جب آئل نکلتا ہے اس میں کیا کچھ مکس ہوا ہوتا ہے نا، اس میں الائشیں بھی ہوں گی، لیکن پھر اس کو فلٹر کرتے ہیں، ریفائنریز ہوتی ہیں۔ تو خام مسلمان یہ جو آپ مسلمان ہیں، ان کی تربیت لازمی ہے، یعنی اس میں تربیت کے بہت سارے نقطے ملتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک صورت میں اتنا کچھ اس میں اللہ نے ڈال دیا، اور اس میں آپ کو مجھے صرف ایک اس نقشے کی روشنی سے ذہن میں یہ بات تو آ گئی ہے کہ اسلام کی چوٹی، اسلام کی ذروہ جو ہے وہ جہاد ہے۔ اب یہ سورت کب نازل ہوئی، کہاں ہوئی، یہ بہت اہم ہے۔ بہت کم لوگ جو ہیں اس کو بغیر اس کی ہسٹری یا اس کا پس منظر سمجھے ہوئے جانتے ہیں، اور یہ سورت سمجھ ہی کب آتی ہے جب اس کا بیک گراؤنڈ ہو۔ کل ہم نے سورت انفال سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈسکس کیا تھا، کہاں سے شروع کیا تھا؟ آپ کی نبوت سے۔ پہلے مکی دور تھا، پھر کچھ نہ سمجھا، پھر آہستہ آہستہ کچھ سمجھ گئے، پھر ٹارچر شروع ہو گیا، اور ہوتے ہوتے 10 سال 13 سال گزر گئے، اور پھر غزوہ بدر تک حالات آئے تھے۔ اب یہاں اس سے ذرا سا شروع کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی پہلی جنگ غزوہ بدر تھی، جو ایک ان پلانڈ جنگ تھی، وہ ہم نے پچھلی سورت کے سٹارٹ میں سن لیا۔ اللہ کے حکم سے کوئی ارادہ نہیں تھا، یہی تھا کہ بہت ہوگا تو ایک جھڑپ ہو جائے گی اور مسلمان اپنا مال لے کر ان سے واپس آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کی اس ایک کال پہ لبئی کہنے والے 313 لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آج ہمارے مقدر کے فیصلے ہو رہے ہیں، کہ آج اس جنگ میں جانا، چاہے ہم نے پہلے بات پہ لبئی کہہ دیا ہے، کوئی پلان نہیں تھا، لیکن یہ ہمارے لیے آسمان سے اللہ کے جھانک کر یہ کہنے کا ذریعہ بنے گا کہ اے اہل بدر، آج کے بعد تم کچھ بھی کر لو، میں نے تمہیں جنت دے دی۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا، زندگی میں بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، ہمیں شروع میں پتہ بھی نہیں ہوتا بعد میں یہ کیا ہوں گی، لیکن اللہ اس میں اتنی خیر، اتنی برکت، اور ہمارے لیے اس میں اتنا فائدہ رکھ دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں، ساری نہیں اٹھتا سجدے سے کہ اللہ شکر ہے اس وقت یس کہہ دیا تھا میں نے، مجھے نہیں پتا تھا یہ چھوٹی سی یس ہمارے لیے کیا۔ تو بہرحال ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کال پہ لبئی کہنے والے جو تھے وہ چل پڑے۔ بدر سے لے کر احد، پھر اس کے بعد مختلف جنگوں سے گزرتے گزرتے غزوہ تبوک کا وقت آتا ہے۔ یعنی آپ اگر میرے ہاتھ کو دیکھیں نا، تو یہ بدر ہے، ایک بریکٹ، تو یہ جو آج ہم پڑھنے لگے نا، یہ تبوک ہے۔ یہ دو کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں ہیں، ملاحمات کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھی، اس میں سے تبوک تھی۔ تو یہ سورت، جس کو سورت توبہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ نازل ہوئی تھی اس دور میں جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں 9 ہجری میں کیسرے روم کے مقابلے کے لیے نکلے۔ کتنے لوگ جمع ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ؟ 30,000، بہت زیادہ تعداد ہے۔ ادھر سے کیسرے روم کی کیا تیاریاں تھیں؟ 2,00,000۔ 2,00,000 کے مقابلے میں 30,000 کا مطلب آپ کو پتا؟ ایک صحابی کے سامنے 6 کافر کھڑے ہیں، یعنی 1:6 کا ریشو تھا۔ اور یہ ایک ایسی دعوت تھی اللہ کے نبی کی زبان سے جس میں جہاد فرض عین تھا، کفایہ نہیں تھا کہ میری جگہ آپ چلے جائیں، آپ میرا بھی اسلام دے دیجئے گا، آپ میری طرف سے بھی کہہ دیں، یہ نہیں تھا، 1-on-1 سب کو جانا۔ اور نہ ڈھکا چھپا رکھا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا۔ تبوک وہ موقع تھا جس پہ اللہ کے نبی نے برملا اعلان کیا کہ ہم تبوک میں جا رہے ہیں، ہم کیسرے روم کا مقابلہ کریں گے، اور وہ تبوک کے ساتھ اس کی سرحد میں لی ہوئی تھی۔ اتنا روب دل پر آیا کیسرے روم کے، آئی کوئی نہیں، صرف اس میں نکلنا ہی تھا۔ تبوک سکھاتی ہے کہ ہمیشہ لڑنا نہیں پڑتا، ہمیشہ دینا نہیں پڑتا، ہمیشہ ہجرتیں نہیں کرنی پڑتی، قربانیاں نہیں دینی پڑتی، اللہ تمہارا دل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ आप अपने बच्चे से भी कहो ना कैंडी देना, तो वो एकदम हाथ पीछे खींचेगा, तो आप कहेंगे मैंने कोई लेना था, मैं नहीं खाती कैंडी, मैं तो तुम्हारा दिल देख रही थी। यहाँ आप दूसरी बात अपने लिए नोट करें, जिंदगी में बाज नेकियों की कॉल सिर्फ इसलिए हमारे तक आती है कि हम लब्बाई कह दें बगैर सोच के। बेखतर कूद पड़ा तिश्ये नमरूद मेंश, क्या अल्लाह ने इब्राहिम को जलाना था भला? क्या अल्लाह का इरादा था इब्राहिम आग में जले, ऐसा प्यारा बंदा? लेकिन अल्लाह इब्राहिम का दिल देख रहे थे। और क्या नन्हे इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलवानी थी अल्लाह हमारा ऐसा? नहीं, अल्लाह इस्माइल का दिल देख रहा था, बाप बेटे की आजमाइश थी। जिसको ये फलसफा समझ आ गया ना, बस वो अल्लाह का हो गया, बस वो है वलीउल्लाह, जिसने अपनी जिंदगी का हर मामला अपने रब के ऊपर डाल दिया। और सहाबा ने भी फिर अकल नहीं इस्तेमाल की, और वल्लाह ही अगर उस दिन सहाबा अकल इस्तेमाल कर लेते तो शायद 30,000 नहीं 3,000 भी ना जाते। खड़ी फसलें तैयार, खजूर की फसल साल में एक बार होती है, और अगर इस वक्त फसल खड़ी है तैयार है ये ना तोड़ी, तो मतलब सारे साल का फाका। भूख, ड्राउट, कहत और गर्मी शिद्दत की, कि मुनाफिकों ने कह दिया कि ना जाओ गर्मी में, तो जवाब मिला इसी सूरत में कि जहन्नुम की आग बड़ी सख्त है, उसको भी तो देख लो। फिर आप देखिए दुश्मन कितना मुकाबले में, साथ आज तक जितनी जंगें हुई थी ये अपने इर्द गिर्द से हुई थी, ऐसे ही अपने ही हम वतनों से हम लड़ते रहे, अल्लाह ना करे पाकिस्तानी पाकिस्तानियों से ही लड़ते रहे। लेकिन अगर किसी वक्त पाकिस्तानियों को जाके किसी दूसरी कौम से लड़ना पड़े। और चौथी बात यह है कि फासला कितना था, तवील इतना। और पांचवी बात है सवारियाँ कोई नहीं, हम राइट प्रॉब्लम की वजह से कितने इश्यूज खड़े कर दें। सहाबा के लिए तो इतना आसान था, कह देते कोई नहीं है सवारियाँ, जिनके पास नहीं थी वो रोते हुए गए, अल्लाह ने उस अदा को भी कुरान में पेश कर दिया। अल्लाह मुझे आपको इस दर्जे का इताअत गुजार बना दे। हम नताएज तो तबूक वाले चाहते हैं, लेकिन कोशिशें हमारी तबूक वाली नहीं है। याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी का ये खुलासा बना लें, हर मौके पे जब आपकी ज़िंदगी में कोई नेकी ऐसी आए जो मुश्किल लग रही है, तो मान लें ये आपकी तबूक है या बदर है। उस वक्त शैतान को पता होता है इसमें खैर है, वो हमें हेकी पेंकी में नहीं 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 सोच लो इफ्स एंड बट्स, प्रोज एंड कॉन सोच लो, जरा मैं देख लूँ मेरे हक में क्या बेहतर है, आप मत सोचिए। याद रखिए, अल्लाह के रास्ते में निकलना ये सोच के करने वाला काम नहीं है, सोची प्याते बंदा गया। और क्या आज देखिए मुसलमान गाजर मूलियों की तरह काट रहे हैं, आज ऐसा एक लीडर मिल जाए जैसे नबी सल्लम थे, वर्ल्ड वाइड लीडर, और पूरी उम्मत जो इस वक्त चारों तरफ से जलील और शर्मिंदा की जा रही है ना, एक दफ़ा खड़े हो जाए, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि कल का कैसर भी मुकाबले पे नहीं आया था, आज के कैसर भी नहीं आएंगे, आज के कैसर तो उससे भी क्या गुजरे हैं, ये तो सिर्फ गीदड़ भभकी हैं। 20 दिन तक अल्लाह के नबी ने वहाँ पड़ाव डाला, कैसर के मातहत छोटी मोटी सारी रियासतें जो थी वो आई मिली अल्लाह के नबी के हाथ पे, उन्होंने जिजिया कबूल किया और कहा हम आपके बागजार बनेंगे, यानी हम इस्लामी रियासत के इताअत में जिजिया ले, हमसे जंग ना करे। कहा ठीक है चले जाओ। कितना जिजिया मिल गया, जंग नहीं हुई, हथियार नहीं टूटे, लेकिन पैसा मिलना शुरू हो गया। 9 हिजरी शाबान के महीने में अल्लाह के नबी वापस आते हैं, तो सूरत तौबा का जो दूसरा हिस्सा है ना, सेकंड हाफ, ये गज़वे तबूक की तैयारी के सिलसिले में रजब 9 हिजरी से पहले नाजिल होता है, और सूरत तौबा का जो तीसरा हिस्सा है ये गज़वे तबूक से वापसी पर मुख्तलिफ वाक़यात का मजमू है, यानी मुख्तलिफ औक़ात में एक आयत कभी नाजिल हो गई है कभी आ गई। और सूरत तौबा का जो पहला हिस्सा है वो सबसे आखिर में ज़ुल्क़ादा 9 हिजरी में हज से पहले नाजिल हुआ, जिसके अहकामात अव्वलन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर हज बनाकर पेश किए गए, और फिर कुछ और अहकामात देकर हज़रत अली को भेजा गया, और इस तरह वहाँ मक्का वालों को चंद ऐसी बातों का हुक्म दे दिया गया कि जो उनके लिए नाकाबले बयान थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी में सूरत का बिल्कुल शुरू का हिस्सा है, बरात मिन अल्लाह व रसूल ही। क्या पता चलता है कि सूरह तौबा 9 हिजरी में नाजिल हुई, जिसमें गज़वाए तबूक रजब 9 हिजरी का सफ़र हुआ था, आयत 113 मक्का में, 10 नबवी में अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई, जिसमें मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़रत की ममानियत थी, यानी मना कर दिया गया। अब आप देखिए कि अगर आप सूरह तौबा को देखें ना, तो ये मुझे ऐसे लगता है जैसे फ्लावर पॉट, कुछ सूरतें हैं जैसे आपने पीछे भी देखा सूरह अल-अन'आम सारी इकट्ठी नाजिल हो गई, आगे आप पढ़ेंगे सूरत यूसुफ पूरी इकट्ठी होगी। अब इकट्ठी एक है ना, तो ऐसे जैसे आपने एक खाना पकाया सबको खाना है वही। सूरत तौबा क्या है? बफे मुख्तलिफ किस्म के खाने हैं। खाने में एक बहुत ही वैरायटी होती है ना, डिफरेंट डिशेस होती हैं, तो उसमें चूज करना मुश्किल होता है। सूरत तौबा जो वाकई शऊर से पढ़ता है उसको समझ नहीं आता इसकी कौन सी आयत छोड़ूं और कौन सी लूं। ये भी रूहानी खानों का एक मजमू है। इसमें मसलन आप देखिए कि इसकी मुख्तलिफ आयतें किस दौर में नाजिल हुई, ये आपके लिए बहुत अहम है जानना, क्योंकि इसकी तफसीर बदल जाती है अगर आप इसको मजमून ना समझें। पहली 12 आयतें 9 हिजरी के पहले हज से पहले नाजिल हुई, गालिबन आयात 25 से 28 या 36 से 37 भी इसी दौर में नाजिल हुई। 13 से 24 8 हिजरी के दरमियान में सुलह हदैबिया के माहदे टूट जाने पर नाजिल हुई। 29 to 35 अहले किताब से जिहाद और जिजिये से मुतल्लिक है, और गजवे तबूक रजब 9 हिजरी से पहले नाजिल हुई। फिर आयात 38 से 41 गजवे तबूक की तैयारी के सिलसिले में नाजिल हुई, जिनमें जिहाद की तरगीब है, और आयात 42 से 127 गजवे तबूक से वापसी पर 9 हिजरी के अवाखिर में नाजिल हुई, जो ज़्यादातर मुनाफिकीन से मुतल्लिक है, और आखिरी दो आयतें 128 और 129 10 हिजरी के आखिर में नाजिल हुई, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्दमंदी और खैर ख्वाही की कदर करने का मशवरा दिया गया। यानी ये दिल में बदगुमानी आ जाती है, ये लीडर हमें क्यों लड़ा रहे हैं, ये हमें हर वक्त क्यों मुश्किलों में डाले रखते हैं। तो डर था कि कहीं गजवे तबूक में अल्लाह के नबी ने जो सख्त किस्म के अहकाम दिए, सबको निकलना ये है वो है, तो उसको पढ़ने के बाद कोई अल्लाह के नबी को सख्त दिल और नौज़ बिल्ला कुछ इस किस्म का ना समझने लग जाए। तो उस पे फिर आखिरी बहुत ही प्यारी आयतें हैं जो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से आपको वहाँ रखा गया। इससे क्या पता चलता है कि बाज़ दफ़ा अपने से बड़े, जैसे बच्चे हम हैं हम तो माँ बाप की बातें, शागिर्द हैं तो उस्तादों की बातें, और उम्मत हैं तो नबी की बातें, यानी एक लीडर की बातें, वक्त पे समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती हमें? क्योंकि हम अभी उस लेवल पे नहीं देख रहे होते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक इतनी सी दीवार है जितने ये आपके टेबल हैं, इतनी दीवार है, ठीक है। बाप और बेटा इधर से आया, बेटा दीवार से कद उसका ज़रा सा छोटा है, उसको क्या दिख रहा है आगे दीवार, और बाप किधर है वो खड़ा है, उसको तो वो अगर डोर खोल दे तो रिसेप्शन क्या, पीछे से जो विंडोज़ है वो भी दिखेंगी ना। बाप कहे कि पीछे ये है वो है, बेटा के नहीं वो तो दीवार है, ये ग्रे रंग की दीवार है, ये तो सीमट की दीवार है। तो बाप को क्या चाहिए, बेटे को यहाँ से पकड़ के ना एक दफ़ा ऊपर कर दे और दिखा दे। यही काम लीडर्स का होता है, यही माँ बाप का काम होना चाहिए, तरबियत का ये नुक्ता नोट करें, बजाय इसके कि हर वक्त अपने बच्चों को रोकते टोकते रहे। आप उनके कद बड़े करके उनको वो खूबसूरत मंजर दिखाइए जो आप देख रहे हैं, जो इंजाम आपको नज़र आ रहा है, और आप खौफ ज़्यादा हैं कि मेरे बच्चे क्यों स्टक हो गए, इनकी ज़िंदगी इतनी क्यों बेअमल है। तो फिर आपको काम क्या है कि आप उनकी अपलिफ्टिंग करें। नबी सल्लम सहाबा कराम को इतने मुश्किल गोल दे देते थे बाज़ दफ़ा, कि अगर सहाबा की तरबियत ना होती तो हो सकता है कि अल्लाह के नबी से बदगुमान हो जाते, लेकिन नहीं हुए। एक मौका संगीन था जो इसी सूरत में हम पढ़ेंगे, जब आपने एहराम खोलने का मशवरा दिया था सुलह हुदैबिया के बाद, उमर जैसा शख्स भी ना मान सका। क्यों अल्लाह के नबी, क्या आप सच्चे नबी नहीं हैं, हैं क्या हम हक पे नहीं हैं, तो फिर आप इनकी वन साइडेड शर्तें क्यों मान रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह के नबी ये फतह, ये फतह, हाँ ये फतह, और फतह का कब पता चला, अभी मक्का से निकल के मदीना नहीं पहुंचे, तो इन्ना फतह ना लका फतह मुबीना। कैसी खूबसूरत आयतें जो नाजिल हुई, फिर उमर को शर्मिंदगी हुई, और नफिल पढ़ रहे हैं, कभी गुलाम आजाद कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं कि अल्लाह मेरा वो जुर्म और गुना माफ कर दे। उनको अपने छोटे छोटे गुना भी जुर्म लगते थे कि मैंने नबी के सामने जुबान ऊंची की, मुराद है कि मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, बदतमीजी तो उमर ने कभी नहीं की होगी, लेकिन बात नहीं समझ आई, यानी उनको ये चीज़ भी बुरी लगती थी, तो लिहाजा उन्होंने इस पे अपने आप को रोका। फिर इसी तरह सूरत तौबा का एक और नाम भी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें अपने साथ इंडेक्स नोट में लिख लें, आपको फ़ायदा देंगी। सूरत तौबा और बरात, बरा किधर है, पहली ही लफ्ज़ में, क्योंकि इसमें बेजारी थी, ठीक है। तौबा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बाज़ अहले ईमान के कसूरों की मुआफ़ी का जिक्र है, यानी तौबा का तस्करा है। तीसरी बात सूरह तौबा की खास, जो सबको ही पता है लेकिन यहाँ जिक्र ज़रूरी है, कि बिस्मिल्लाह नहीं है इसके शुरू में, वजह इसलिए बहुत सारी बातें हैं। पहली बात है कि सूरह अनफाल और तौबा का मज़मून एक ही है, और बिस्मिल्लाह साहबा वहीं लिखते थे जहाँ अल्लाह के नबी लिखाते थे, नहीं लिखाई तो नहीं लिखी। यहाँ से आप ये भी देखें कि कुरान में इजाफा नहीं हो सकता, कमी बेशी नहीं की जा सकती कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। कुरान तो यहाँ खामोश है, तो हम क्या कहते हैं, वाकिना ज़ाबल कब्री, वाकिना ज़ाबल हशरी, वाकिना ज़ाबल मीज़ान, इसकी गुंजाइश नहीं है। आप किसी की किताब में चार लफ्ज़ बढ़ाकर उसको प्रिंट करा लें, आप पे मुकदमा हो जाएगा कि आपने उसकी कॉपी राइट्स को चैलेंज किया है। तो कुरान में भी आप और मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते। दूसरी वजह यह कि इसमें किताल और जिहाद का तस्करा है। सहाबा कहते हैं कि ये सूरत अपने साथ तलवार लेकर आई है, तो अमान तो इसमें है ही नहीं। तीसरी बात है, इसमें माहदों को तोड़ने का हुक्म है, तो बिस्मिल्लाह के नाम में तो पनाह होती है, अमन होता है। तो ये सारी बातें हम अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर में कर चुके हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इस सूरत को आज मेरे आपके पढ़ने से क्या है, मैंने आपने क्या पढ़ना है। ठीक है, ये सूरत वाकई सीरत पढ़े बगैर समझी नहीं जाती। मैंने पहली दफ़ा जब ये सूरत पढ़ी ना, मैं अपने आपको दिल की बात बताती हूँ, मैं आपको सच, ये मेरी बेइल्मी है जो मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन नहीं बताऊँगी ना तो शायद आपके अंदर भी ऐसी कोई चीज़ आए तो आप भी अपनी छुपा जाएंगे। लेकिन हमेशा शुक्राने के तौर पे, के तौर पे बता देनी चाहिए। मेरा क्या ख्याल था, जब भी बचपन से थोड़ी बहुत जो भी सीरत वगैरह पढ़ी पढ़ाई होगी, और वो क्या थी कि मक्का फतह हुआ था और अल्लाह के नबी फौत हो गए, यानी जैसे फिल्मों का एक एंड होता है ना, एंड में मक्का फतह हो गया और अल्लाह के नबी चले गए। मुझे ज़ाती तौर पे ये पता था 13 साल अल्लाह के नबी मक्का में रहे, फिर 10 साल मदीना में आए, और बस एंड पे मक्का फतह हुआ और उसके बाद अल्लाह के नबी का काम पूरा हो गया और आप फौत हो गए, ये मेरा गुमान था। अच्छा, अब इसके बाद जब मैंने पहली दफ़ा, मुझे आज भी वो जगह याद है कराची शहर में जहाँ मैंने इस सूरत को पहली दफ़ा समझा था, बरात मिन अल्लाह व रसूली ही लिल्लज़ीना अहदतु मिनल मुशरिकीन, और इसमें जो 4 माह की मोहलतें और फिर इसके अगले साल हज का तस्कर। मैंने जब इस आयत की तफसीर पढ़ी तो उसमें लिखा था कि सन 9 हिजरी में नबी सल्लम ने अबू बकर और उनको भेजा। मुझे शुभे पड़ गए कि ये आगे पीछे है कुछ। मुझे नहीं पता था कि मक्का 8 हिजरी में फतह हुआ, और मुझे ये भी नहीं पता था कि 8 साल तक अल्लाह के नबी उसी जगह सब्र से बैठे रहे, और 13 साल उस मक्का में बुत भी थे, लोग अपने गलत तरीक़ों के मुताबिक हज और उमरे और लबैक भी कहते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको चैलेंज नहीं किया। 8 साल एक मुस्लिम रियासत क्रिएट हुए हुए मदीना के हो चुके हैं, आपने जाकर उनके काबा में या खाना काबा में कोई गंदगी नहीं डलवाई। हाँ, जब मक्का फतह हुआ, सुलह हुदैबिया हुई 6 में, वापस आए 7 हिजरी में, उमरतुल कज़ा किया, 8वीं हिजरी तक वो अपना मुहदीना कायम रख सके, तो गए और जाकर बगैर किसी तलवार के तोड़े मक्का फतह हो गया। 8 हिजरी तक तो ये हुआ। अब आप देखिए कि 8 साल तक तो मक्का वालों ने मौजें कर ली, लेकिन जब अगला साल आया तो क्वेश्चन था कि अब तो मक्का आपके अंडर है और आपसे पूछा जाएगा आपके मुल्क, आपके स्कूल, आपके शहर में क्या हो रहा है। तो फिर 9 हिजरी का जब आया तो अबू बकर को भेजा कि जाके, अब ये भी नहीं कहा कि खबरदार किसी को आने ना देना, दाखला बंद। वल्ला ही मैं कह सकती हूँ, मेरे ऊपर अगर कोई छाप पड़ी होगी ना ज़िंदगी में, सीरत की पड़ी है। मैं बरमला ऐलान कर सकती हूँ, मैंने अगर इतने प्यार मोहब्बत और तपाक से रही को मख्तूम पढ़ी और पढ़ाई ना होती, कम अज़ कम मेरा कुरान का फहम ये ना होता। आप मुझे उंगलियों पे क्या, मुझे टिप्स पे याद है साल सन वजह, क्योंकि मैंने सीरत को डीप डाउन पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, और इसको पढ़े बगैर। और यकीन करें कि आप किसी भी ऐसे बंदे को जो यानी सतही तौर पे इल्म हासिल करता है, आप जाके उसे सिर्फ तरतीब ज़मानी के अतबार से अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के वाक़यात पूछिए, नहीं बताते। बुक से पढ़ लेंगे सीरत, ये मतलब बरात मिन अल्लाह लिखा है तो खोलेंगे कुरान और नीचे उसकी शरह में जो लिखा है वो पढ़ के सुना देंगे, लेकिन दिमाग पे नहीं होता। ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ, सीरत की अहमियत। आजकल हर जगह हम सीरत शुरू कर रहे हैं, कई जगह, कल भी एक जगह क्लास थी वहाँ भी सीरत हो रही है, उधर भी। तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र करती हूँ कि सीरत नबी पढ़ते हैं, हमें किसी और के नक्शे कदम की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल 9 हिजरी में फिर मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इस चीज़ का मौका दिया, और फिर 4 महीने की मोहलत, कि अभी भी ठीक है, इट्स ओके, 4 माह हत्ता यस्मा कलामुल्लाह, माहदे पूरे करने हैं तो 6 महीने रहते हैं, माहदा पूरा कर लो, इससे भी कोई प्यारा दीन होगा। और मैं नहीं कह सकती कि नबी सल्लम का जो मुकाम अब दिल में और समझ में वो होता, और जो बाहर की दुनिया में लोग प्रोपेगंडे करते हैं हमारे नबी के, हो सकता है किसी की बात सुन के हमारे दिल में कुछ गड़बड़ हो जाती। तो ये सीरत की रोशनी में पढ़ी जाने वाली सूरतें हैं, और फिर इसमें जो कुछ रह गई बात आपके मेरे लिए, तो मुझे आपको इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखना। मैंने आपने इसमें ये नहीं देखना कि हरकल की तरफ आपने आंखों में आंखें डाल के देखने का फैसला कर दिया। मुझे आपको ये नहीं देखना कि खड़ी फसलें तैयार थीं और हुक्म दे दिया साथियों को करो। आपने मैंने इस सूरत को पढ़ते वक्त सहाबा को देखना, क्या वो जज्बे थे, क्या वो उनका यकीन था, क्या अतीउल्लाह और अतीउर रसूल पे उनकी गिरफ्त थी। सूरत अनफाल में पढ़ा ना, मेन इंग्रेडिएंट क्या था? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दअकुम लिमा युहयीकुम। यकीन था सहाबा को, 24 आयत थी गालिबन पिछली सूरत में, के कबूल कर लो अल्लाह और उसके रसूल की दावत को, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी है। आज हम इस दावतों और इस तरीके को छोड़कर जान बलब है, दम घुटा पड़ा है, वल्लाह ही दम घुटा पड़ा है, लेकिन हम मुआशरे से टक्कर नहीं ले सकते, हम रिश्तेदारों को नाराज नहीं कर सकते, हम एक चलती चलाई तरीके को जिंदगी को छोड़कर जरा सा रिस्क नहीं ले सकते। तो याद रखिए, दुश्मन आपसे तभी डरेगा जब आप खुद अल्लाह और रसूल से डरेंगे। गैर भी आपकी तब मानेंगे जब आप अल्लाह और रसूल की मानेंगे। और यहाँ एक छोटी सी बात नोट करें, फिर हम बुक से पढ़ते हैं। ये तस्खीर अरब थी, अरब को मुसख़र करने का ये दौर था। सबसे पहले 13 साल मक्का में क्या जरिया इख्तियार हुआ? ये देखिए, ये अब इस्लाम के बेसिक्स हैं, आपको मुझे हिकमत समझ आएगी। आप नॉर्वे में इस्लाम लाना चाहते हैं, कैसे लाएंगे? आपके सामने लिखा हुआ है, 13 साल तबलीग करें, पहले बंदे बंदे के पास पैगाम पहुंचाएं, वो दर्द मंदी रखें, फला अल्लाह का बाख नफ्स कला सारी है, सादिक और अमीन बनिए, अपनी रेपुटेशन अच्छी रखिए, झूठी छुट्टियां ना लें लोगों से, झूठा टैक्स ना खाएं, झूठ बोल बोल के वीजे ना लगवाएं। हम तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं जब वो देखते हैं कि ये मुसलमान है और इतना इनको पैसे से प्यार है। पहले उनके साथ वो दर्दमंदी कर, लोगों के घरों के कूड़े उठाएं, हाँ जरा लोगों का बोझ उठाएं, हाँ फिर 13 साल बाद देखेंगे, सोचेंगे कि क्या आगे करना है, फिर रिस्पॉन्स क्या है। मेरा यकीन है कि आप और मैं सिर्फ इन 13 सालों में कई लोगों के दिलों के बंद दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन हम लिए दिए रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि सब्र किया, टॉर्चर हुआ बर्दाश्त किया, हमारी तरह शोर नहीं मचा दिया, हाय मर गए हाय मर गए। साहबा अगर हमारी तरह सोशल मीडिया पे आके अपने दुख सुना रहे होते ना, तो लोग जो इस्लाम पे आ रहे थे वो आते ही ना। खामोश सब्र, 3-4 साल तक साहबा ने इतनी मारें भी जो खाई, लेकिन बोले नहीं, छोड़ा नहीं है, ये नहीं कहा छोड़ दो। अच्छा, आज जरा सी पाबंदी लगे लोग कहते हैं छोड़ दो। मैं कहती हूँ पाबंदी लगती उन पे जो छोड़ते हैं, आप नहीं छोड़ेंगे अगला बंदा खुद ही मान जाएगा इसने नहीं छोड़ना। कितनी मुश्किल थी मक्की दौर में, आप हजरत यासिर, बीबी सुमैया, अम्मार, इनके पास से गुजरे हैं और कह रहे हैं सब्रन अला अली यासिर, ए यासिर के घर वालों सब्र करो, इन्नी मौईद कुमुल जन्ना, फिर भी नहीं कहा के छोड़ दो। क्यों मार खाते हो, अबू जहल के हाथों से क्यों मरना है, छोड़ दो, अल्लाह का तुम्हारा पता है। नहीं, आज हम सबसे पहले इस्लाम छोड़ते हैं, फिर अल्लाह को तो बाद में छोड़ते हैं। तो बहरहाल इससे पता चलता है कि ये वक्त गुजर गया। फिर मदीना के 8 साल हिकमत अमली, हर मौके पे उनको वेलकम किया, आओ जंग करने आए हो, आओ हम लड़ेंगे, सुलह करते हो हम करेंगे। लेकिन अब जो वक्त आ गया तबूक का, आप कह लीजिए ये आखिरी गोली थी। किस तरीके से ऐसे मौके पे एक तो चैलेंज करके कुफार को वहां से निकाल दिया। आज भी जब अल्लाह हज और उमरे पे ले जाता है, मैं गलियों कोनों नुकड़ों को देख देख के ये आयत याद करती हूँ जो बरातु मिन अल्लाह वाली है, और मैं सोचती हूँ कि हिकमत क्या थी। हर साल सोचती हूँ, ये लाशौर में बंधा हुआ है। फिर मुझे उसका जवाब अल्लाह ताला देते हैं कि जमीन का ये टुकड़ा है, अगर आप सोशल मीडिया की सारी ताने काट दें, सारे नेट सिस्टम काट दें, तो यहाँ जो दिख रहा है, नमाजों के वक्त में दुकानें खुली हैं, जा रहे हैं औरतें निकाबों में हैं, मर्द दाढ़ियों में हैं, अगर ये हिस्सा भी कुफार के लिए ओपन होता तो यहाँ भी ये काम ना हो पाता। समझ रहे? अल्लाह ने एक जोन तैयार करके मुसलमानों को दिखा दिए कि ऐसा होता है इस्लाम। तो वहाँ जाके जो लोग जाते हैं वो फिर कहते हैं बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा होता है, वहाँ तो मियाँ भी नमाज़ पढ़ने लग गए थे, वहाँ तो बच्चे भी पढ़ लेते हैं। वजह क्या है कि वो अल्लाह ने एक किस्म का सिक्योर जोन रखा हुआ है। एक नॉन मुस्लिम से ऐसी बात हुई मक्का से की, तो कहती यस आई वॉन्ट टू गो देयर, मेरे साथ जहाज़ में बैठी हुई थी ना, तो कोई बात हो रही ना, यस आई हर्ड अ लॉट एंड आई सॉ द मूवीज। मैंने नहीं उसको बोला कि तू नहीं जा सकती बाजी, मैंने कहा इसने कौन सा जाना है, हालांकि गैर हिकमाना बात थी। मैं फ़ौरन शुद ना 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 काफिर मन इन्नमल मुशरिकून नजस, और मुशरिक तो काफिर नजस है और वो पलीद है ना, मुझे क्या ज़रूरत है कहने की, अल्लाह उसको इस्लाम दे दे वो चली जाए। आज चाहते हैं वो नहीं जा सकते, वो वजह क्या है कि अल्लाह ने वहाँ इस्लाम का निज़ाम रखना था। अगर आप अपने बच्चों के सेलफोन सारे इधर ही छोड़ के चले जाए, ले जाए उनको 1 महीना 1.5 वहाँ, यकीन करें कि वो भूल जाएंगे बाकी चीज़ें, जो वहाँ लज्जत है, जो खुशी है। एक बच्ची इस साल हमारे साथ गई थी, यानी कह लें कि बिगड़े हुए माहौल की एक अलमबरदार बच्ची थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो स्लीवलेस पहन के साइकिलों पे फिरती और लड़कों को सीटियां बजाने वाली बच्ची थी, लेकिन दौरे कुरान ने अल्लाह ने उसका दिल बदला, उसने माँ बाप ने भी जाना था वो भी गई, तो वो आके यही सुना रही थी कि मेरा आने को दिल ही नहीं कर रहा था वापस। क्यों? फर्क होता है, कुरान की महफिल से उठने को दिल नहीं करता, एक मक्का से आने को दिल नहीं करता। तो ये सारा कुछ आपके मेरे सामने इसलिए कि हम अपने ईमान की तजदीद करें। हम कहाँ खड़े, वेयर आई एम स्टैंड, मैं खड़ी किधर हूँ, मेरा मुकाम क्या है, मैं कर क्या रही हूँ। बाकी जंगी बातों को एक तरफ कर दीजिए, सहाबा की वो समावतात तो देखिए, हम ऐसे वक्त में क्या करते, क्या हम आधे घर का सामान ले आते, हम 900 ऊंट लदे फदे सामान के साथ उस्मान की तरह सौ सौ करके देते। हम तो कहते लो इनका तो काम ही है कि मांगना, अल्लाह के नबी तो बस हमें हर वक्त मुश्किलों में डालते हैं। शुक्र कीजिए हैं तो डाल रहे हैं, जब नहीं थे आप कौन कर रहा है। हजरत उमर का दौर है, कल परसों उधर पे बात की है किसी जगह मैंने उनके बारे में भी। तो इस वक्त आपको मुझे अपने बच्चों को ये हिस्ट्री पढ़ाने की ज़रूरत है, जो आपके दिलों में भी और उनके अंदर भी ईमान लेकर आएगी। कभी भी इल्म एक दफ़ा में पुख्ता नहीं होता, ये याद रखे। और आज आप छोड़े लेना, मैं अक्सर लोगों को सुनती भी हूँ, देखती भी हूँ, जी अरबी कोर्स कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी से 4 साल का अरबिक लैंग्वेज कोर्स करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, तकवा नहीं आएगा, बल्कि और खुल जाएंगे। औरतें मर्द बैठे, मर्द पढ़ा रहे, गैर मुस्लिमों से अब कुरान पढ़ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ अपने अंदर की वो तस्कीन कर रहे हैं। लेकिन वो जो पढ़ के, जैसे अब कुरान की खूबी नहीं, पढ़ते हुए शर्म आने लगती है। अभी तो हमने सूरत तौबा की कोई तफसीर थोड़ी कर रहे हैं, सच बताएं जब सहाबा का किस्सा पढ़ते हैं तो शर्म नहीं आती? ये आपको ना किसी अरबी ग्रामर यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ के आना है, ना तजवीद में आना है, लेकिन हम समझते कि हमने तफसीर पढ़ ली है। हालांकि ये तो वो कह लीजिए कि एक कुआं है जिसके अंदर से निकलता है। हमेशा इसको इन डेप्थ पढ़ें और ख़ुद पढ़ लें। अगर आपको लगता है ना कि कोर्स अब कर चुके हैं, आप खुद आगे से मज़ीद पढ़ें।